नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ब्लॉगिंग के लिए एक सही और फायदेमंद विषय, मतलब कि नीश कैसे चुनें। हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, अनुभवी ब्लॉगर्स की सलाह है, मार्केट एनालिसिस भी है, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे ज़रूरी बातें आपके लिए निकाल कर लाएं।
हाँ, नमस्ते।
आज की बातचीत का सीधा मकसद है उन लोगों की मदद करना जो ब्लॉगिंग से घर बैठे कुछ कमाना चाहते हैं या फिर अपनी किसी शौक को, अपने पैशन को एक करियर में बदलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे शुरू होता है और सही नीश चुनना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, ब्लॉगिंग की दुनिया में चाहे आप बिल्कुल नए हों या अपने ब्लॉग को एक नई दिशा देना चाहते हो, मेरे हिसाब से सही नीश चुनना शायद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फैसला है। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि आप लिखेंगे क्या, बल्कि ये भी तय करता है कि आप किन लोगों तक पहुँचेंगे, कितनी आसानी से पहुँचेंगे और क्या आप लंबे समय तक टिक पाएंगे और कमा पाएंगे। ये पूरी चीज़ की नींव है, समझिए।
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नीश चीज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक टॉपिक है या कुछ और?
ये टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा गहरा है। हाँ, निश का मतलब है कि आपका ब्लॉग किसी एक खास विषय या क्षेत्र पर फोकस करेगा, लेकिन सिर्फ विषय नहीं बल्कि उस विषय का एक मतलब स्पेसिफिक पहलू। जैसे मान लीजिए हेल्थ, अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ब्रॉड नीश जिसे कहते हैं।
हाँ, काफी बड़ा है।
इसमें जानकारी तो बहुत मिल जाएगी,
हाँ
लेकिन कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा
हाँ
और आपके जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत बिखरे हुए हो सकते हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ जैसे बड़े विषय पर लिखना मुश्किल हो सकता है शुरू में।
मुश्किल नहीं कहूंगा, पर हाँ, ज्यादा चैलेंजिंग जरूर है। वहीं अगर आप इसे थोड़ा संकीर्ण करें, मतलब एक नैरो नीश बनाएं, जैसे कि ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट वाले योगासन।
हाँ, ये स्पेसिफिक हो गया।
बिल्कुल, अब आप एक खास ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। इसमें शायद टोटल पढ़ने वाले कम हो, लेकिन वो ज्यादा फोकस्ड होंगे, आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपके लिए उनसे जुड़ना और हाँ, कमाई करना भी आसान हो सकता है। कॉम्पिटिशन भी अक्सर कम मिलता है ऐसे में।
ये बात तो दिलचस्प है। मतलब थोड़ा खास बनना, स्पेसिफिक होना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
हाँ, एक रिसोर्स में ये बात बहुत अच्छे से कही गई है कि ऐसा निश चुने जो आपको उस विषय का एक्सपर्ट बनने का मौका दे, ना कि सिर्फ एक जनरल जानकारी देने वाला। एक्सपर्ट वाली बात आपको भीड़ से अलग करती है, और साथ ही ये भी जरूरी है कि आप ऐसा निश चुने जिसमें आपकी लंबे समय तक दिलचस्पी बनी रहे और जिसका कॉन्टेंट हमेशा काम का रहे, जिसे एवरग्रीन कंटेंट कहते हैं।
एवरग्रीन कंटेंट मतलब जो पुराना ना हो जल्दी से।
हाँ, मतलब ऐसा कंटेंट जो आज भी काम का हो और शायद कुछ सालों बाद भी लोगों के लिए उपयोगी हो।
ये लंबे समय तक रुचि वाली बात मुझे बहुत जरूरी लग रही है। कई बार लोग सिर्फ पैसा देखकर कोई हॉट टॉपिक चुन लेते हैं, पर शायद उसमें उनका दिल नहीं लगता। फिर वैसे टॉपिक पर लगातार लिखना कितना मुश्किल हो सकता है?
बहुत मुश्किल, और सच कहूं तो ये ब्लॉगिंग में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसीलिए अपनी रुचि, अपना पैशन और अपने स्किल्स, मतलब आप किस चीज में अच्छे हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं? किस चीज में आपकी पहले से कोई जानकारी है, कोई अनुभव है? क्या कोई ऐसा विषय है जिस पर आप लगातार बिना थके, बिना बोर हुए महीनों या सालों तक भी लिख सकते हैं?
लेकिन क्या सिर्फ रुचि काफी है? मान लीजिए मुझे जैसे आपने कहा, पुरानी फिल्मों के पोस्टर जमा करने का शौक है, बहुत पैशन है, पर क्या उसे पढ़ने वाले ज्यादा लोग होंगे? उसमें कमाई होगी?
यही यही तो बैलेंस वाली बात है। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी, पैशन बिना मार्केट डिमांड के सिर्फ एक शौक है, और डिमांड बिना पैशन के जल्दी ही बर्नआउट यानी थकावट ले आती है। मतलब अगर आपके पैशन वाले टॉपिक को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता या उसमें कमाई की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, तो वो ठीक है, एक हॉबी ब्लॉग बन सकता है, पर उससे करियर बनाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टॉपिक में पैसा है, पर आपको उसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आता, तो आप शायद कुछ महीनों में ही उसे छोड़ देंगे।
तो ये बैलेंस कैसे खोजें? कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसका?
हाँ, एक तरीका है, आप एक लिस्ट बनाइए अपने सारे आइडियाज की जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, फिर हर आइडिया को कुछ पैमानों पर तौलिए। इसमें आपकी रुचि कितनी है, 1 से 10 पर, आपका ज्ञान या स्किल कितना है, क्या लगता है इसमें कमाई की क्षमता है, कम, मध्यम, ज्यादा, और सबसे जरूरी, क्या बाजार में इसकी मांग है।
अच्छा, जैसे लिस्ट में हो सकता है घर पर सब्जियां उगाना, शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स, AI टूल्स रिव्यू, बजट ट्रैवल टिप्स, फिर इनको रेट करना है?
हाँ बिल्कुल, हर एक को इन पैमानों पर देखिए, इससे आपको एक साफ तस्वीर मिलेगी कि कौन सा आइडिया वाकई में आपके लिए सही हो सकता है, जिसमें पैशन भी हो और पोटेंशियल भी।
ये वाकई में हेल्पफुल लग रहा है। मतलब सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी सुननी है, आंकड़ों को भी देखना है। अब आते हैं मार्केट डिमांड पर। ये कैसे पता करें कि किसी निश में लोगों की दिलचस्पी है भी या नहीं, और क्या वो फायदेमंद हो सकता है?
इसके लिए देखिए, हमें करनी होगी मार्केट रिसर्च। और अच्छी बात यह है कि आजकल कई ऑनलाइन टूल्स हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं। जैसे एक है गूगल ट्रेंड्स। ये दिखाता है कि समय के साथ किसी टॉपिक में लोगों की रुचि बढ़ रही है, घट रही है या स्थिर है।
अच्छा।
फिर गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे टूल्स हैं, ये बताते हैं कि किसी विषय से जुड़े शब्दों को, यानी कि कीवर्ड्स को, महीने में कितनी बार सर्च किया जाता है। इसे सर्च वॉल्यूम कहते हैं। इससे डिमांड का अंदाजा लगता है।
ठीक है, और कंपटीशन का कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी टॉपिक को बहुत लोग सर्च करते हैं, पर उस पर पहले से ही बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं तो?
हाँ, ये भी देखना जरूरी है। उसके लिए फिर SEM रश या AHREFs जैसे थोड़े एडवांस टूल काम आते हैं। ये बताते हैं कि किसी निश में कंपटीशन कितना है, कौन से ब्लॉग्स टॉप पर चल रहे हैं, वो किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उबर सजेस्ट जैसा टूल भी है जो कीवर्ड आइडियाज और लोग ऑनलाइन क्या सवाल पूछ रहे हैं ये सब ढूंढने में मदद करता है। दिन सबको मिलाकर एक पूरी पिक्चर बनती है।
क्या कुछ उदाहरण है? मतलब कौन से नीश आजकल पॉपुलर हैं और उनमें कितना पोटेंशियल है, एक अंदाजा मिल सकता है?
हाँ, कुछ आंकड़े हैं जो एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखना होगा कि ये बदलते रहते हैं। जैसे AI और टेक्नोलॉजी, इसमें सर्च वॉल्यूम अक्सर बहुत ज्यादा होता है, लाखों में। कमाई की क्षमता भी हाई होती है, पर हाँ, कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा।
ओके।
हेल्थ और फिटनेस, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लाखों में, कंपटीशन मीडियम से हाई, कमाई की क्षमता भी मीडियम से अच्छी। पर्सनल फाइनेंस, मतलब इन्वेस्टमेंट, सेविंग वगैरह, सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा, लाखों में, कंपटीशन मीडियम, पर कमाई की क्षमता अक्सर बहुत अच्छी होती है इसमें।
हाँ, ये सुना है मैंने।
फिर ट्रैवल और लाइफस्टाइल, सर्च वॉल्यूम अच्छा, लाखों में, कंपटीशन मीडियम, कमाई की क्षमता भी मीडियम। फूड और कुकिंग, सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा, लाखों में, कंपटीशन मीडियम, कमाई की क्षमता भी मीडियम। पर ये बस उदाहरण है, असली आंकड़े तो रिसर्च करने पर ही पता चलेंगे आपके खास आइडिया के लिए।
यहाँ ये भी जानना जरूरी लगता है कि क्या सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे भागना सही है? जैसे आजकल AI बहुत चल रहा है, तो क्या सबको उसी पर लिखना चाहिए?
देखिए, ये एक आम गलती हो सकती है। ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं। आज कोई चीज बहुत पॉपुलर है, कल शायद ना हो। इसलिए उन टॉपिक्स पर ध्यान देना ज्यादा सेफ रहता है जो एवरग्रीन हो, मतलब जो लंबे समय तक लोगों के काम आए।
जैसे
जैसे हेल्थ, पैसा, रिश्ते, शौक, खाना पीना, ये ऐसे एरिया हैं जिनमें लोगों की रुचि हमेशा बनी रहती है, किसी ना किसी रूप में। हाँ, आप ट्रेंड्स का फायदा जरूर उठा सकते हैं अपने एवरग्रीन निश के अंदर, लेकिन आपकी नींव एवरग्रीन होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे।
ठीक है, तो हमने अपनी रुचि देखी, मार्केट की डिमांड जांची, एवरग्रीन है या नहीं ये भी सोचा। अब वो सवाल जो शायद सबके मन में होता है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? कमाई की क्षमता, मतलब मोनेटाइजेशन पोटेंशियल का क्या?
ये सवाल निश चुनते समय ही सोच लेना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लॉग को सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे आएंगे कैसे। कुछ मेन तरीके हैं जो ब्लॉगिंग में चलते हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने ब्लॉग पर प्रमोट करते हैं।
अच्छा।
जब कोई आपके दिए लिंक से जाकर कुछ खरीदता है, तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी साइट्स के लिए भी हो सकता है, या फिर आपके निश से जुड़े खास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए भी।
ठीक है, और
दूसरा है अपने डिजिटल उत्पाद बेचना। अगर आपको किसी विषय में अच्छी जानकारी है, एक्सपर्टीज है, तो आप अपनी ई बुक बना सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, टेम्पलेट्स या कोई ट्रेनिंग गाइड बनाकर बेच सकते हैं। ये अपनी नॉलेज को सीधे कमाई में बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है।
ये इंटरेस्टिंग है।
तीसरा तरीका है विज्ञापन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट। जब आपके ब्लॉग पर ठीक ठाक ट्रैफिक आने लगता है, मतलब लोग आपके ब्लॉग पर आने लगते हैं, तो आप गूगल एडसेंस जैसे नेटवर्क के विज्ञापन अपनी साइट पर दिखा सकते हैं, या फिर कंपनी आपको सीधे अप्रोच कर सकती है उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक पोस्ट लिखने के लिए, और वो आपको उसके लिए पैसे देंगी। इसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहते हैं।
तो मतलब कमाई के बारे में शुरू से ही सोचना जरूरी है। एक और दिलचस्प बात थी कि सिर्फ कंटेंट से नहीं, अपनी एक्सपर्टीज से कमाई करने पर ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है?
बिल्कुल। देखिए, अगर आप सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होगा अच्छी कमाई करने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके कोई उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोई कोर्स या ई बुक या कोई कंसल्टिंग सर्विस ऑफर करते हैं, तो आप कम ट्रैफिक में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसलिए निश चुनते समय ये जरूर देखिए कि क्या उसमें इस तरह की कमाई की गुंजाइश है, क्या आप उसमें अपने एक्सपर्टीज को बेच सकते हैं।
समझ गई। अब एक और अहम पहलू, हमारे पाठक कौन है, मतलब हम लिख किसके लिए रहे हैं, ये समझना क्यों जरूरी है?
अरे ये तो बेहद जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका आइडियल रीडर कौन है, तो आप उनके लिए ऐसा कंटेंट कैसे बनाएंगे जो उन्हें पसंद आए, जो उनके काम आए। आपको उनकी उम्र का अंदाज़ा होना चाहिए, उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सब समझना होगा।
उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, मान लीजिए आपका नीश है घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके।
हाँ?
तो आपके पाठक शायद 18 से 40 साल के बीच के युवा या अधेड़ उम्र के लोग होंगे।
हाँ?
हो सकता है वो अपनी जॉब से खुश ना हो, या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, या घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो।
हाँ?
उनकी प्रॉब्लम क्या है? शायद जानकारी की कमी, या सही रास्ता ना पता होना, या फ्रॉड से डरना। आपका सोल्यूशन क्या होगा? उन्हें भरोसेमंद तरीके बताना, स्टेप बाय स्टेप गाइड देना, उनके सवालों के जवाब देना।
तो अपने पाठक को गहराई से जानने से कंटेंट अपने आप सही दिशा में जाने लगता है।
बिल्कुल, इसे ऑडियंस पर्सोना बनाना भी कहते हैं। मतलब आप अपने आदर्श पाठक की एक काल्पनिक प्रोफाइल बना लेते हैं। जब आप उसे ध्यान में रखकर लिखते हैं तो आप उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसा कहा जाता है, अपने दर्शकों को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। उनकी जरूरतें समझने से आप अपने निश को और भी बेहतर और शार्प बना सकते हैं।
मान लीजिए हमने ये सारी रिसर्च कर ली, रुचि, मांग, कमाई, दर्शक, सब देख लिया, और हमें एक निश अब सही लग रहा है। क्या कोई तरीका है कि हम पक्का कर सके कि ये वाकई काम करेगा, मतलब इससे पहले कि हम इसमें महीनों या सालों की मेहनत लगा दें?
हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं निश वैलिडेशन, मतलब अपने चुने हुए निश को परखना, टेस्ट करना। इसके कुछ अच्छे तरीके हैं। पहला, दोबारा कीवर्ड रिसर्च करें। अब और गहराई से देखें, क्या वाकई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर आप रैंक कर सकते हैं? क्या सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है? कंपटीशन कितना है?
ओके, डबल चेक।
दूसरा, सर्वे या पोल करें। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी ऑडियंस पहले से है, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स, तो उनसे सीधे पूछिए, क्या आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहेंगे? क्या ये आपके लिए उपयोगी होगा?
अच्छा आइडिया है।
तीसरा, सोशल मीडिया पर देखें। रेडिट, कोरा, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, इन जगहों पर देखें कि लोग इस विषय पर क्या बातें कर रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिनका आप हल दे सकते हैं। और चौथा, जो मुझे सबसे कारगर लगता है, वो है माइक्रो टेस्टिंग।
माइक्रो टेस्टिंग वो क्या है?
मतलब उस निश पर एक दो बहुत अच्छे डिटेल में ब्लॉग पोस्ट लिखिए, उन्हें थोड़ा प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और फिर देखिए कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। क्या लोग उसे पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्या कोई सवाल पूछ रहे हैं?
अच्छा, मतलब सीधे बड़ा तालाब बनाने से पहले एक छोटा सा गड्ढा खोद के पानी देख लेना।
बिल्कुल सही कहा आपने, फीडबैक आपका सबसे अच्छा गाइड है। इन छोटे टेस्ट से आपको अंदाजा लग जाता है कि क्या ये निश वाकई लोगों को पसंद आ रहा है, और क्या इसमें आगे बढ़ने का दम है। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है।
ठीक है, नीश पक्का हो गया, वैलिडेट भी हो गया, अब असली काम, ट्रैफिक कैसे लाएं। यहीं पर SEO और कीवर्ड्स की भूमिका आती है ना?
हाँ, अब असली खेल शुरू होता है कंटेंट बनाने का और उसे लोगों तक पहुंचाने का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, ये पक्का करता है कि जब लोग गूगल जैसे सर्च इंजन पर आपके निश से जुड़ी जानकारी खोजें, तो आपका ब्लॉग नतीजों में ऊपर नजर आए। इसके लिए आपको सही कीवर्ड्स ढूंढने होंगे, ऐसे शब्द या वाक्यांश जिन्हें लोग सर्च करते हैं, यानी अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, लेकिन जिन पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा ना हो, मतलब लो या मीडियम डिफिकल्टी वाले।
आपने पहले कीवर्ड्स और टूल्स के बारे में बताया था, तो क्या SEO का मतलब है कि बस बहुत सारे कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में डाल दो?
फोकस कीवर्ड चुनना होता है और उससे मिलते जुलते सहायक कीवर्ड्स, रिलेटेड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपने कंटेंट में नेचुरली, मतलब स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे अगर आपका मेन कीवर्ड है प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीश कैसे चुने, तो आप लेख में वर्क फ्रॉम होम ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग से पैसे कमाएं जैसे वाक्यांश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां वो फिट बैठे। लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स ठूस देना, जिसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, उससे फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हो सकता है। गूगल इसे पसंद नहीं करता।
तो फिर SEO का असली मकसद क्या है अगर सिर्फ कीवर्ड्स डालना नहीं है तो?
SEO का असली मकसद है आपके रीडर्स को बेस्ट और सबसे उपयोगी जानकारी देना, ऐसी जानकारी जो उनकी सर्च क्वेरी, मतलब जो वो ढूंढ रहे हैं, उसका सबसे अच्छा जवाब हो। जब आप ऐसा करते हैं तो गूगल खुद ही आपके कंटेंट को पसंद करता है और उसे ऊपर दिखाता है। कीवर्ड सिर्फ गूगल को यह समझने में मदद करते हैं कि आपका कंटेंट किस बारे में है। वैल्यू देना पहली प्राथमिकता है, यहीं पर CPC, कॉस्ट पर क्लिक जैसे मेट्रिक्स भी काम आते हैं। वो दिखाते हैं कि विज्ञापन देने वाले कुछ कीवर्ड्स के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं, जिससे उस निश की कमर्शियल वैल्यू का भी अंदाजा लगता है।
समझ गई, तो वैल्यू और कीवर्ड्स का सही बैलेंस चाहिए। अब जब निश पता है, दर्शक पता है, कीवर्ड्स पता है, तो कंटेंट बनाने की योजना कैसे बनाए, मतलब क्या लिखें, कब लिखें?
इसके लिए एक कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत फायदेमंद होता है। ये बेसिकली एक शेड्यूल होता है कि आप कब, किस टॉपिक पर और किस फॉर्मेट में कंटेंट पब्लिश करेंगे।
फॉर्मेट मतलब?
मतलब ब्लॉग पोस्ट होगा या वीडियो बनाएंगे या कोई इन्फोग्राफिक होगा या सोशल मीडिया पोस्ट।
कैलेंडर बनाने से पहले आपको टॉपिक्स पर रिसर्च करनी होगी। देखिए आपके दर्शक क्या जानना चाहते हैं, आपकी कीवर्ड रिसर्च से कौन से विषय निकले हैं, आजकल आपके निश में क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब से आपको आइडियाज मिलेंगे।
और हाँ, अलग अलग तरह का कंटेंट बनाने से भी दर्शक बोर नहीं होते और जुड़े रहते हैं।
कहते हैं कंटेंट की योजना बनाना असल में सफलता की योजना बनाने जैसा है।
बिल्कुल सही कहा, बिना प्लान के आप कभी कुछ लिखेंगे, कभी कुछ, और शायद बीच में छोड़ भी दे। प्लानिंग से आप रेगुलर रहते हैं, क्वालिटी बनी रहती है और आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है, यह आपको ट्रैक पर रखता है।
इस पूरे सफर में गलतियां होना भी मतलब नेचुरल है। वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे नए और शायद कभी कभी पुराने ब्लॉगर्स को भी बचना चाहिए?
हाँ, कुछ गलतियां हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं। पहली, बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के कूद पड़ना। बस कोई भी टॉपिक चुन लिया क्योंकि वो आसान लग रहा है या किसी दोस्त ने कहा।
हाँ, ये होता है।
दूसरी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले निश में चले जाना बिना ये समझे कि वहां टिकना कितना मुश्किल होगा, खासकर शुरुआत में। तीसरी, सिर्फ पैसे के पीछे भागना और अपने जुनून या रुचि को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, इससे बर्नआउट पक्का है। चौथी, कमाई की संभावना को अनदेखा करना। ऐसा निश चुन लेना जिसमें पैसे कमाने के तरीके ही बहुत कम हो या मुश्किल हो। और पांचवी, जो बहुत कॉमन है, वो है इनकंसिस्टेंट होना। मतलब कभी जोश में बहुत लिख दिया, फिर महीनों गायब हो गए। ब्लॉगिंग में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है।
तो निचोड़ यही निकलता है कि रिसर्च, पैशन और प्रॉफिट, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही तालमेल बनाना होगा। ऐसा निश जो आपको एक्साइटेड भी रखे और आपके दर्शकों की जरूरतें भी पूरी करे और जिससे कमाई भी हो सके।
बिल्कुल, यही टिकाऊ सफलता की कुंजी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है इस खेल में।
चलिए मान लेते हैं कि हमने वो बैलेंस ढूंढ लिया, निश फाइनल हो गया। अब ब्लॉग शुरू करने के लिए फटाफट अगले कदम क्या होने चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स।
हाँ, तो निश फाइनल होने के बाद बारी आती है ब्लॉग सेटअप की। मोटे तौर पर ये कदम होंगे, एक एक डोमेन नाम सोचिए और रजिस्टर कीजिए आपके ब्लॉग का पता, जैसे yourblognames.com। कोशिश करें कि ये यादगार हो और आपके निश से मिलता जुलता हो। दो, वेब होस्टिंग खरीदिए, ये वो जगह है जहां आपके ब्लॉग की सारी फाइल्स ऑनलाइन रहेंगी। तीन, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कीजिए। ज्यादातर लोग वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है और फ्री भी है।
वर्डप्रेस, हाँ।
हाँ। एक अच्छी थीम चुनिए, मतलब आपके ब्लॉग का डिजाइन। ये दिखने में अच्छा होना चाहिए और मोबाइल पर भी सही से खुलना चाहिए। पांच, कुछ जरूरी प्लगइन्स इंस्टॉल कीजिए। ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ब्लॉग में एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ते हैं, जैसे SEO के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। छह, अपनी कंटेंट योजना बनाइए, जो हमने पहले डिस्कस की थी, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। सात, कमाई के तरीके सेटअप कीजिए, जैसे अफिलिएट लिंक्स के लिए अकाउंट बनाना या एडसेंस का कोड लगाना। भले ही शुरू में कमाई ना हो, पर सेटअप रेडी रखना चाहिए।
आठ, और सबसे जरूरी, नियमित रूप से बेहतरीन कॉन्टेंट पब्लिश करना शुरू कर दीजिए
और फिर लगातार सीखते रहना, ट्रैक करते रहना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस देखते रहना।
हाँ बिल्कुल, सेटअप तो एक बार का काम है, असली मैराथन तो उसके बाद शुरू होती है। लगातार सीखते रहना, सुधार करते रहना और सबसे जरूरी, टिके रहना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। तो कुल मिलाकर ब्लॉगिंग के लिए सही नीश चुनना सिर्फ एक टॉपिक चुनना नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये आपकी रुचि, आपके हुनर, बाजार की जरूरत और पैसे कमाने की संभावना के बीच वो एक सही मीठा संतुलन खोजने जैसा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये संतुलन सही बैठ जाता है तो फिर ऑनलाइन इनकम, एक लॉयल ऑडियंस और अपने काम से मिलने वाली खुशी, ये सब हासिल किया जा सकता है। अगले कदम भी अब काफी साफ हैं। पहले खुद को जानें, फिर बाजार को समझें, छोटे टेस्ट करके पक्का करें, अपने दर्शकों की सुने और फिर पूरी मेहनत और लगन से काम शुरू करें। और वो जो आम सवाल होते हैं, जैसे शुरुआती लोग कैसे चुने या निश और टॉपिक में क्या अंतर है या कौन से टूल्स यूज करें, इन सब के जवाब इसी पूरी प्रक्रिया में छिपे हैं। रुचि, मांग, कमाई और कंपटीशन का एनालिसिस करके ही सही रास्ता मिलता है।
तो ये थी ब्लॉगिंग के लिए एक फायदेमंद नीश चुनने की कला और विज्ञान पर हमारी आज की बातचीत, उन स्रोतों के आधार पर जिन्हें हमने देखा। एक बात जो साफ तौर पर सामने आई वो ये कि आपका नीश वाकई आपकी सुपर पावर बन सकता है अगर सही तरीके से चुना जाए।
हाँ बिल्कुल, ये साफ है कि सिर्फ जुनून या सिर्फ पैसा दोनों अकेले काफी नहीं है। बैलेंस, रिसर्च और लगातार मेहनत यही रास्ता है। यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा जो शायद उन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं था पर आज की बातचीत से मेरे मन में आ रहा है।
हाँ जरूर।
हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की आदतें, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसे में जिन नीश को हम आज एवरग्रीन मानते हैं, क्या वो हमेशा वैसे ही रहेंगे? और ब्लॉगर्स को इस बदलते माहौल में अपने नीश को कैसे इवॉल्व करना चाहिए, उसमें कैसे बदलाव लाने चाहिए ताकि वो हमेशा रेलेवेंट बने रहें? ये एक बड़ा सवाल है।
वाकई ये सोचने वाली बात है कि बदलते समय के साथ कैसे कदम मिलाए जाएं। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।